الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وقال تعالى التائبون الحامدون الساجدون
कल जो बात चल रही थी पहले उसको मुकम्मल करके दूसरा मजमून शुरू करूँगा। यहाँ के निज़ाम और मामूलात के सिलसिले में आपको बतलाया जा रहा था, मगरिब के बाद जैसा कि बतलाया क्योंकि मगरिब में हमें कोशिश ये करनी चाहिए के अवामीन का भी एहतमाम करें। जैसा कि मैंने बतलाया कि अगर अपने मकाम पर अपने मशागिल और मसरूफियतों की वजह से उसका मौका नहीं मिलता था, ये न सोचें कि हम यहाँ पढ़ेंगे फिर वहाँ जाने के बाद इसकी नौबत नहीं आएगी तो ये गुया मुदावमत के खिलाफ है, बल्कि हजरत हकीमुल उम्मत नवर अल्लाह मतलब फरमाते हैं कि रमज़ान मुबारक में कुछ मखसूस आमाल का रमज़ान तक के लिए एहतमाम करना ये मुदावमत के खिलाफ नहीं है, गोया ये भी एक नौ की मुदावमत है कि रमज़ान में ये आमाल किए जाते हैं। बहरहाल जब यहाँ आए हैं इसीलिए आए हैं कि कुछ नेक आमाल का अपने आप को आदि बनाएं, अपनी तरबियत के लिए आए हैं। अगर वहाँ इसका मौका नहीं था तो यहाँ इसको शुरू करके अपने दिल ही दिल में ये तय कर लें कि इसका इंशाअल्लाह इस्तेमाल करेंगे। अपने अकाबिर को देखा क्या अवाबीन और तहज्जुद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इशराक का भी अहले ईमान है, मदारिस की तदरीसी खिदमत की वजह से इशराक का एहतमाम کرنا مشکل ہے، لیکن یہ اوابین اور تہجد تو آسان ہے، اس کو اپنے مشاغل کے ساتھ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے یہ درخواست ہے کہ یہیں سے یہ عمل اوابین والا شروع کر دیں، اور یہ نیت کر لیں کہ آئندہ بھی اس کا اہتمام کریں گے۔ آدمی اپنی زندگی میں جو ہے تبدیلی لانے کے لیے مختلف فیصلے کرتا ہے، اور فیصلے کرنے کے لیے آدمی کو کچھ بہانہ چاہیے۔ بھائی آدمی حج میں گیا تو حج میں جانے کے بعد جا کر جاتا ہے تو طے کرتا ہے اب حج میں آیا ہوں تو حج سے واپسی کے بعد اب میری زندگی وہ نہیں رہے گی جو پہلے تھی، بلکہ اب میری زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ کسی بزرگ کی خدمت میں گیا تو وہاں اس طرح کی کا سوچتا ہے، اسی طریقے سے کوئی اور بات تبدیلی لانے کے لیے ایک طالب علم ہے جو ہے فراغت حاصل ہوئی، سند ملی، دستار بندی ہوئی تو وہ سوچتا ہے جب اب دستار بندی ہو گئی تو اب مجھے اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے۔ بہرحال اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے اس طرح کے مواقع کا بڑا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں آنے کا موقع دیا ہے تو اب بڑا اسی موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کریں کہ انشاءاللہ آئندہ اس کا اہتمام کریں گے۔ عوامین کے اندر ویسے تو حضور سنن موقعہ ہیں، ان کے علاوہ 6 رکعات ادا کی جاتی ہیں، اور بقول حضرت حکیم اکبر صاحب نور اللہ مرکزہ کے کہ اب اگر بعض لوگ ان 6 میں ان دو کو بھی شامل کر لیں، بیزی مین اور حضرت فرماتے ہیں دو قسم کے آدمی ہیں، بیزی مین اور فری مین۔ فری مین جو ہیں یعنی جن کو وقت ہے وہ دو کے علاوہ 6 پڑھ لیں، اور اگر بیزی مین ہیں مشغولی زیادہ ہے تو دو کو ملا کر کے 6 پڑھ لیں۔ بہرحال اس کی عادت بنانی چاہیے، اس کے بڑے برکات ہیں۔ تو ایک یہاں بھی جب آئے ہیں تو اس کا اہتمام کیا جائے۔ میں نے جیسا کہ کہا کہ وقت رہتا ہے، اس کے باوجود ہمارا نفس ہمیں جو ہے کاہلی اور سستی پر آمادہ کرتے ہوئے درکات پڑھ کے بہت سے حضرات بیٹھے ہیں، یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے یہ کہیں گے یہ کہیں گے، ایک فرصت ہے، یہاں اور کوئی کام نہیں ہے، آپ کو گھر نہیں جانا ہے، آپ کو اپنا کاروبار کا کوئی کام انجام نہیں دینا، اسی لیے آئے ہیں۔ تو پھر اس طرح جو ہے بیٹھ کر کے اپنے وقتوں کو ضائع کرنا کیا مانا رکھتا ہے؟ ہمارا قابل کے یہاں تو بڑا اہتمام تھا، کل آپ نے سنا حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ، اور دنوں میں تو ہوا بھی لیکن رمضان کے اندر 20 رکعت ادا فرماتے تھے، کل اثر کے بعد کی مجلس میں آپ نے سنا ہوگا۔ تو بہرحال اس کا یہ ہونا ہمارے اقابر کو دیکھا کہ اس کا بڑا احترام، رمضان میں خاص طور پر اس نماز کے اندر قرآن کے بھی ایک دو پارے جو ہے پڑھنے کا اہتمام، جو حفاظ ہیں وہ بھی۔ البتہ یہاں کا ہمارا ایک نظام ہے، اس کے پیش نظر دسترخوان کھانا وانا تو اگر آدمی اتنا تلاوت نہ کرے لیکن اس کا برکاتوں کا تو اہتمام کرے، اور جیسا کہ اس وقت کل بتلایا تھا اس کے بعد کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنی طبی جو ضروریات ہیں پیشاب پاخانہ وضو وغیرہ تو اس کو پورا کرنے میں کم سے کم وقت لگانا چاہیے، اور پھر آ کر کے مشغول ہو جائیں۔ یہ بڑا قیمتی وقت ہے، رات کا ابتدائی حصہ ہے، تو اس کو جو ہے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کرے ہمیں گویا لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو گویا یہ وقت بھی بیکار نہیں جائے گا۔ میں نے جیسا کہ کہا عموماً لوگ جو ہے راتوں کو وصول کرنے کی جب نیت کرتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں تو اس وقت کی طرف سے غفلت برتی جاتی، کون سے مغرب و عشاء کے درمیانی وقت، وہ عام طور پر لوگ دوسرے کاموں میں لگا دیتے ہیں، حالانکہ یہ تو بالکل شروع کا وقت ہے اور نشاط کا وقت ہے، اس لیے اس میں اس کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بارہ اس کے بعد بھی آ کر کے دعاؤں میں مشغول ہوں، اور پھر نماز عشاء کا وقت یہ ہوگا، عشاء میں تراویح کے اندر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں 3 پارے، کیونکہ 29 کو ختم کرنا ہے، اس لیے اس عشرے میں پہلے 6 دن بجائے 3 کے 3.5 پاروں کا سلسلہ، اس کو بھی بڑے شوق اور رغبت، یعنی उसको भूल समझ करके नहीं, बल्कि गया शौक के साथ, पूरी गया तवज्जो के साथ और दिल की गया दिल की तमन्ना और दिल की तवज्जो के साथ इन कुरान को सुनने का, तरावी को पढ़ने का इस्तेमाल किया जाए। बहुत से पीछे खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, रुकू का जब वक्त आता है तो उस वक्त रुकू में जाते हैं। ये शक्लें जो हैं वो अच्छी नहीं है। कुरान के अंदर मुनाफिकीन के मुताबिक खुदाई ताला का इरशाद है, कामू इलसला से कामू कुसाला इराउन अन्नास, लोगों को दिखलाने के लिए। तो देख रहा है तो नियत बांध देंगे, बोला अल्लाह को दिखलाना छोड़ देंगे, अल्लाह के लिए करना मुश्किल। बोला ये कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, अपनी नमाज में भी वह जिक्र की तिलावत कुरान के सुनने के, जो बाहर बैठा रहेगा तो वो लाए कुरून अल्लाह इल्ला कलीला में शामिल हो जाएगा। तो बारा ये कुरान के अंदर मुनाफिकीन की जो खसलत बताई गई है, हदीस में भी मुनाफिकीन के अलामत के उलमा फरमा दीजिए, इसलिए बताया जाता है ताकि अहले ईमान अपने आप को ऐसी खतरों से बचाने का एहतमाम करें। तो हमें भी अपने आप को इससे बचाना है, शौक और रहमत के साथ कुरान। और वैसे भी ये कुरान जो तरावी में सुना जाता है, जैसा कि आपने फजाए रमजान के अंदर सुना कि तरावी की 20 रकात जो है वो मुस्तकिल सुन्नत है, और तरावी के अंदर पूरे कुरान पाक को पढ़ना या सुनना दो में से एक, ये भी एक मुस्तकिल सुन्नत है। अब अगर आप ये तरावी इस तरह अदा की, एक आयत भी आपकी छूट गई पूरे महीने के अंदर जो तरावी के अंदर सुनी नहीं गई, तो तरावी के अंदर पूरे कुरान पाक को सुनने की जो सुन्नत है वह आपके हाथ से छूट जाएगी। दो सुन्नतें अलग अलग हैं, दोनों पर अमल करना। बात लोग ये करते हैं कहीं पांच पारे की, तीन पारे की तरावी होती है, छह दिन में, दस दिन में तो खत्म करके फिर तरावी ही नहीं पड़ती। नहीं, कुरान तो सुन लिया, अभी तरावी रोजाना की भी सरकार वो अभी भी सुन्नत उनकी बाकी है। अब चाहे तो वह असर नौ मुसा कुरान मुकम्मल करें या उसके बगैर भी, लेकिन तरावी पढ़नी जरूरी। बात तरावी पढ़ते हैं लेकिन कुरान को मुकम्मल सुनने का ऐसे मामले आपने देखा होगा, उत्पाद कई कोई एकाएद अगर चूक गए तो फिर उसको दोहराया जाता है, वो इसीलिए। और पूरे कुरान में एक मरतबा जहरन जो है बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है, ये इसीलिए जाके पूरा कुरान तरावी के अंदर सुनना या पढ़ना जो मसनू है उस पर अमल हो जाए। इसलिए ये लोग जो बाद बैठे रहते हैं बाद में ये जानते हैं, सही तरीका नहीं है, ये तो बहुत गलत है। और एक तरह की गया नमाज की तरफ से बेतवज्जुही अदम इत्तेफाक है, ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ है। इसलिए इससे अपने आप को बचाना है, और यहाँ हमें अपनी तरबियत कर अपने मिजाज, हमारी तरबियतें क्योंकि हमने जिस माहौल में नशो नुमा पाई और अब तक जिन चीज़ों के हम आदि रहे उसकी वजह से हमारी तबीयतें इस तरह की इबादतों के लिए जल्दी से आमादा नहीं होती। तो उसका मतलब ये नहीं कि इस इबादत को छोड़ा जाए, बल्कि अपनी तबीयत की तरबियत करके इस्लाह की जाए। एक आदमी बीमार हुआ, बुखार आया, और बुखार की वजह से उसका जायका बिगड़ गया, जिसकी वजह से मीठी चीज भी उसको कड़वी मालूम होती है। और वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि वो अपना इलाज कराएगा, दवा कराएगा। वो समझता है कि मीठी चीज को कहा का कड़वा मालूम होना ये मेरी बीमारी है, इसकी कोई कमी नहीं है। तो ऐसे ही हमारा इन जो है इन चीज़ों को रगबत के बगैर, बिना रगबत बगैर गया शौक के ये करना, ये हमारा मर्ज है। तो जरूरत है इस मर्ज को दूर करने की, नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाए। इसलिए हमें तरबियत उसी वक्त होगी जब कुछ मुजाहदा करना, अपने आप को आदि बनाने के लिए जो है कुछ मुजाहदा करना पड़ेगा, नफ्स के खिलाफ वर्जी करनी पड़ेगी। यही कुरान शरीफ का बुनियादी सबक है। हजरत हकीमुल उम्मत नूर अल्लाह मरतबा फरमाते हैं कि जो काम करना है नफ्स उसको करने के लिए तैयार नहीं है, नफ्स पर जबर करके उसको कर करने के काम को, और जिससे बचना है अपनी ख्वाहिशात की वजह से नफ्स उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, हिम्मत करके जबर करके उससे अपने आप को बचा लो। यह है खुलासा तसव्वुफ का। हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यही ये सिलसिला तो जिंदगी भर चलता ही रहेगा। आप कोई आदमी ये नहीं समझ सकते, नहीं ये कर सकता कि कोई ऐसा मौका आएगा कि इससे छुट्टी मिल जाए। मौत तक जब तक कि अल्लाह ताला ने मुकल्लफ और शरीयत के अहकाम का पाबंद हमें बनाया है, इस रूप पे पेश आती रहेगी, नफ्स से मुकाबला होता ही रहेगा। इसलिए आदमी को हर वक्त चौकन्ना रह करके इसमें अपने आप को जो है हिम्मत से काम लेकर आगे बढ़ाना चाहिए। और जो नफ्स जो है ना वो कमजोर के मुकाबले में शेर हो जाता है, कोई आदमी अगर उससे कुछ दब जाए तो वो स्वाब हो जाता है, और कोई आदमी अगर हिम्मत करके उसका मुकाबला कर ले तो फिर वो बीजी बिल्ली की तरह मानने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर जो है अल्लामा हुसैन के अंदर कहा है बच्चे दूध पीने वाला बच्चा जो होता है, जब उसको दूध छुड़ाने का जमाना आता है तो माए जब दूध छुड़ाना चाहती है तो बहुत वो पाँव पछाड़ता है, शोर मचाता है, रात पूरी रात चिल्लाता है, न खुश होता है, न माँ को न घर के दूसरे लोगों को सोने देता है। मगर उसकी इस जो है इसको इन चीजों को देखकर माँ अगर उसके सामने सिपर डाल दे तो कभी भी वो दूध छोड़ सकता नहीं, जवान हो जाएगा। हमारे हजरत सुना थे किसी के हवाले से कि भाई एक आदमी नौजवान हो गया, फिर भी जो है वो अपनी माँ के पास आता दूध पीने की, माना कहती थी जबरदस्ती उसको लेटा था और दूध पीता था, तो ये दूध छूटता नहीं। तुम्हारा दूध छुड़ाने के लिए जो है जरा दिल को सख्त करने की जरूरत है। इसी तरह नफ्स का मुकाबला भी आप करेंगे तो नफ्स जो है वो धीरे धीरे काबू में आएगा, हिम्मत से आप काम लेंगे। अगर थानवी रहमतुल्लाह अलैह तो उसको एक बहुत बड़ी उमदा मिसाल देते हैं, वो गुनाहों के छोड़ने के मामले में जिसको ख्वाहिश होती है ना, तो ख्वाहिश वाले को ख्वाहिश का बहुत शदीद तकाजा होता है, जिसे खुजला होती है, और खास तौर पर जख्म जब वो भरने लगता है, मुंडमी और ठीक होने लगता है तो वो खुजलाने का तकाजा और पैदा होता है। अब अगर कोई आदमी ये सोचे कि अभी तकाजा हुआ खुजला डालेगा तो ये जख्म क्या हो जाएगा, ताजा हो जाएगा, और कभी भी ये जख्म भरने वाला नहीं। अब अगर वो जो है उस खुजली के मौके पर जरा हिम्मत से काम लेकर अपने आप को जो है रोकेगा तो थोड़ी देर के बाद वो तकाजा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि खत्म होता अब दोबारा नहीं पैदा होगा, फिर थोड़ी देर के बाद 5-10 मिनट के बाद दोबारा पैदा होगा, लेकिन पहली मरतबा जितनी उम्र के साथ था अब उसमें जरा एक पॉइंट की कमी आएगी, और पहली मरतबा जब आपने मुकाबला करके उस तकाजे पर अमल नहीं किया तो अब उसका मुकाबला करके अभी भी आपको अमल नहीं करना है। पहली मरतबा उसका मुकाबला करने के लिए आपको जितनी कुवत से काम लेना पड़ा अब उसमें कुछ कमी आएगी, यानी आपको आपको उस कुवत के इस्तेमाल करने में भी एक पॉइंट कम करना पड़ेगा, उससे काम चल जाएगा। इस तरह धीरे 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 जो है वो काबू में हो जाएगा। ये हजरत रहमतुल्लाह इस मिसाल से समझाते हैं कि नफ्सानी ख्वाहिशात जो है उनसे अपने आप को बचाने का यही तरीका है। बाकी आदमी अगर उसके ताबे हो जाए, अगर तो उसमें लज्जत तो है खुजाने में, और पकड़ने के जमाने में शहर पड़ा करते थे कि खाने में मजा है न पीने में मजा है, जो हजरत खारिज के खुजाने में मजा है। ये जो है ये मजा तो है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद जो सोजिश और जलन होगी वो सारा वो मजा निकाल देती है। तो गुनाहों के अंदर भी ख्वाहिशात में मजा तो है, लेकिन उसके बाद फिर अल्लाह की तरफ से जो उसकी सजा दुनिया आखिरत में मिलती है। दोबारा मैं तो ये कह रहा था कि नफ्स के तकाजों को का हमें मुकाबला करना, अपनी तरबियत करनी, जब तक के ये तरबियत नहीं करेंगे उसके लिए मशक्कत बर्दाश्त नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, इसी का नाम मुजाहदा। किसी नेकी अच्छी चीज को हासिल करने के लिए और बुरी चीज से अपने बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए नफ्स का जो मुकाबला किया जाता है और मेहनत की जाती है, उसी मुकाबले और मेहनत का नाम क्या है, मुजाहदा है। ये मुजाहदा तो करना ही है। तो मैं यह कह रहा था ये तरावी के खड़े होने में भी मुजादा है, मुजादा करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह मुजादा करके धीरे धीरे एक वक्त वो आएगा तो उस खड़े रहने में आपको मजा आएगा, लुत्फ आएगा, लुत्फ आएगा। हेलो बोलो, हमारे अकाबी मिसाल दे, जब देखो जो तम्बाकू खाते हैं तो तंबाकू खाने वालों को तंबाकू खाना के तंबाकू को ऐसी कोई लजीज चीज नहीं है जिसने कभी नहीं खाई, वो अगर मुंह में रखेगा तो उसको तो तय हो जाए, उसकी बदबू की वजह से ही और उसकी जो है बददाई की वजह से ही। लेकिन जो आदि हो जाते हैं उनको तो लुत्फ आता है। तो बहरहाल ये नफ्स जो है, ये नफ्स का हाथ ऐसा है, हमें अल्लाह ने यही आजमाइश में रखा है, इसलिए हमें अपने यहाँ रह करके इसकी तरबियत करनी है, इसकी तरफ ध्यान देना है। बारह ये तराई कुरान को शौक और रब्बत के साथ सुनने का अहतमाम होना चाहिए। तराई की फरागत के बाद जैसा कि कल बतलाया वो आपको जो है वो प्रयासी हर एक पढ़ने की आदत डाले, बल्कि ये आदत जो है उसको मुस्तमिल बनाए। अगर फजर के बाद तो पढ़ने की बड़ी फजीलत आई है कामों की कामयाबी के लिए, उसकी भी आदत बना ले, रात को भी पढ़ने की अपने सिलसिले से बुजुर्गों को इशारे समाप्त करने के लिए, तो उससे बड़ा फायदा है। तो यही आदत यही कहीं नहीं बल्कि मुस्तकिल आप बना लेंगे उसको, आप उससे आपको फायदा होगा। और फिर दुआ के बाद जो वक्त दिया जाता है, जैसा कि कल कहा था वही इंफिरादी मामला, वो दो ढाई घंटे या तीन घंटे जो मिलते हैं उसमें चाहें तो आप आराम करें चाहें तो, लेकिन जैसा कि कल बतलाया था वही आखिरी अक्षरा है। और जो है हमें हमारे आदर्श शेख रहमतुल्लाह अलैह को देखा, रोज आना करना, देखो भाई ये बात ये रात कभी आने वाली। और फिर हजरत ने एक बात और भी थी, जैसे यहाँ आज हमारी 23वीं रात होगी, हमारी 23वीं है और हरम की 24वीं है, तो हजरत फरमाते थे तो हमारे यहाँ के हिसाब से ताक रात है, फिर कल जब हमारी ये आएगी 24वीं तो हरम की 25वीं, तो हजरत रोजाना तो हरम की ताक रात है और हमारी भी ताक रात है, जब दोनों को जोड़ जोड़ के रोजाना हजरत फरमाया करते थे ताकि इस रात को वसूल करने का ये बुजुर्गों का अंदाज है, उनकी खिदमत में रहते हैं, तो इस तरह गोया हमारे मिजाजों की तरबियत करते, हमारी सोच का रुख बदल, हम पता नहीं क्या सोचते, वो इस तरह सोच का रुख बदल करके इस रात को वसूल करने का हमें गोया सबक देते हैं, तरबीब देते हैं। दोबारा ये रातें की दोबारा आने वाली नहीं है, दो ढाई घंटे का मामला है। अपने दोस्तों के साथ जब हम गपशप के लिए बैठते हैं तो पूरी रात गुजर जाती है, पता भी नहीं चलता। तो यहाँ चाहे जिस पर जबर करके कर लेंगे तो इंशाल्लाह उसके फवाइद हो हमारा, लेकिन फिर भी कोई आदमी बीमार है, बुरा है, मोम्मर है और अपनी बीमारी और उम्र के तकाजे की वजह से दो घंटे तो इसका जागना तो आराम करना नहीं है। लेकिन दवाओं से मैं कहूँगा और ख़ास तौर पर जो हाफिज हैं उनको चाहिए कि वो जैसा कि कल बतलाया था दो दो तीन दिन की जोड़ी बन करके कुरान सुनाने का एक माहौल होना चाहिए, ताकि उसको देख करके दूसरों को भी रग़बत हो। हदीस में है मन सन्न सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिला बिहा, जिसने कोई अच्छा तरीका जारी किया तो उस तरीके पर चलने का उसको तो अमल सवाब मिलेगा, लेकिन उसको देख कर दूसरे लोग जो उस काम को अंजाम देंगे उसके सवाब में भी उसको हिस्सा वमन सन्न सुन्नतन सैयतन फलहु विद्रोहा विद्रोह मन अमिला बिहा, जिसने कोई बुरा तरीका जारी किया, यही गपशप की मजलिसें लगाना शुरू की, इधर उधर आवारा गर्दी शुरू की और उसको देख कर दूसरे लोग को ये सूझी तो अपना तो गुनाह है, उसके गुनाहों में भी बोझ के अंदर ये सही हो जाएगा। इसलिए हमें अपना मिजाज अपनी तबीयत ऐसी बनानी है कि हम अच्छे काम के जारी करने वाले, अच्छे तरीकों को फरोग देने वाले बने, बुराई के तरीकों को हमारी जात से फरोग मिलना नहीं चाहिए, एक मिजाज हमेशा ऐसा बनाया जाए, कहीं कोई बड़ा खुद कर दो, खुदा ना खास्ता हमारी वजह से कोई दूसरा भी मुबतला हो गया तो सारा बोझ उस बोझ में हमारी भी शिरकत। दोबारा ये फिर जो उठाया जाता है उठ जाए, देर न करें, तो उठाने वाले यहाँ कोई मेरे और आपके मुलाजिम नहीं है, ये तो लिल्लाह बिल्लाह हमारी खिदमत करते हैं, अल्लाह की रजा और खुशी हासिल करने के लिए इनका बड़ा एहसान है, चलाते हैं पिलाते हैं दौड़ भाग करते हैं, ये सब जो है हम कौन ऐसी खिदमत करता है। घर में आजकल तो औलाद ऐसी हो गई कि माँ बाप की भी ऐसी खिदमत करने के लिए वो तैयार नहीं है। हमारे बाप यहाँ जो इस तरह खिदमतें कर रहे हैं वो अल्लाह के खातिर अल्लाह की खुशी के लिए, इसलिए उनके कामों के अंदर हमें ताउन करना चाहिए। यानी जल्दी से इस अंदाज से हम भी शही हो जाए तो फारिज हो जाए, उठ जाए। यानी कि उठाने वाले को बार बार आके उठाना पड़े, उठो उठो उठो, मतबा तीन मतबा चार मतबा, क्योंकि आपकी बीवी नहीं है कि आपके पाँव दबाती रहेगी। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि इसका इस्तेमाल करो, फौरन उठ जाओ, ऐसा मिजाज बनाओ। और ये फायदे की चीज है, जब ऐसा मिजाज बनाएगा तो हर जगह इंशाल्लाह उस समय फायदा पहुंचेगा। उठ करके शहादत तबीयत से फारिग होकर तहज्जुद की आदत डालो। ऐसा जैसा क्या हुआ भी इनके सिलसिले में कहा, अगर आप तहज्जुद घर में पढ़ते हैं सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो यहाँ से ये तय करके जाओ कि यहाँ से जाने के बाद इंशाअल्लाह हमारी तहज्जुद कभी तेज नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम मामूल आठ रकात का था, बारह भी पढ़ते थे लेकिन आठ रकात आपका जैसा क्या आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत मामूल था, इसलिए आठ बाद लोग दो पढ़ते हैं। और फिर जैसा कि मैंने वो अभी इनके सिलसिले में कहा, अल्लाह ने मौका दिया है, फुर्सत को क्यों जाए और उस मौके को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। तो बहरहाल ये फायदा उठाना चाहिए और यही रहकर इसकी आदत दी। उसके बाद दुआ, दुआ तो वैसे भी रमजान मुबारक की हर वक्त की कबूल होती है, लेकिन ये तहज्जुद के वक्त की दुआ दोबारा उससे उसी दौरान पहली के लिए आपको बुलाया जाएगा। पहली करना पहली भी इसीलिए ये मसनून है, इसको मुबारक खाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करार दिया है। तो गया हम खुरमा व हम सवाब, पेट भी बढ़ता है और सवाब भी मिलता है। सुन्नत की नीयत कर लेंगे और ये दिन में सोचेंगे तो उससे फारिग होने के बाद जो थोड़ा वक्त मिलता है, लेट न जाए, लेट जाएंगे तबीयत पर एक कसरत सवार होगा और उसी कसरत की हालत में फिर अगर अजान से पहले उठ के वजू करके शरीफ भी हुए तो ऐसी हालत में जब नमाज पढ़ेंगे तो बगैर निशाद के पढ़ी हुई नमाज अल्लाह ताला के यहाँ दरगाह में क्या कबूल होगी। इसलिए अपनी तबीयत के निशाद को बाकी रखने के लिए सोने के बजाय तिलावत में दुआ वगैरह लोगों ने जवाब चले थे दुआओं के लिए कहा ही था। घर के लोग तो मुतवक्के हैं, लोग आपसे दरखास्तें करते हैं और आप वादा भी करते हैं। अब ये लिखना है दिल में ये सोच लीजिए कि ये जो लोगों से वादे करते जा रहे हैं, हाँ हाँ तो कितने वादे पूरे किए। लोगों ने दुआओं के लिए कहा था, अपने लिए दुआओं का इतना इस्तेमाल नहीं करते दूसरे के लिए, ये तो सब झूठ बोलना हो गया। अमली तौर पर भी आप इसलिए इसका भी आदत इसीलिए कहा। तो मेरी कहानत में कोई कहता है दिल्ली दिल में उसी वक्त उसके लिए दुआ कर देता हूँ ताकि बाद में तो वादा पूरा होता रहेगा लेकिन तो अभी तो हो जाए तो इसका ऐसा होना चाहिए। तो बहरहाल ये भी कोशिश हो और जो है उसके बाद जब फजर हो जाती है फजर से फारिग होकर के आराम और फिर तो जैसा कि कल का निज़ाम बतलाया था। अब ये तो तरतीब निज़ाम की हुई, अब उसके अलावा उसके अंदर चलते फिरते अपने औकात को सही गुजारने के लिए एक तो तस्बीहात का इस्तेमाल, सुबह शाम की तस्बीहात जैसा कि बतलाया कि तीसरा कलमा है दुरूद शरीफ है, इस्तिग़फ़ार है और पहला कलमा है, चौथा कलमा है सुभानअल्लाह वबिहम्दिही सुभानअल्लाह अज़ीम। ये तो जितना 100-100, 300-300 मरतबा उठते बैठते चलते फिरते इसके पढ़ने का इस्तेमाल हो। कुरान पाक की तिलावत तो रोज़ाना का अपना मामूल है, उसके अलावा भी जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ कि ये रमज़ान मुबारक की औकात बड़े कीमती हैं और अल्लाह ताला के कलाम को रमज़ान के साथ और रमज़ान को अल्लाह के कलाम के साथ खुसूसी मुनासिबत है। इसलिए हमारे बुजुर्गों का भी तरीका यही रहा, असलात का भी तरीका यही रहा कि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत और रोज़मर्रा के मामूलात नहीं छोड़ दें, वो तो है वो अपने करके बाकी सारा वक्त जो बचा हुआ है उसको तिलावत के अंदर इस्तेमाल किया जाए। और खुद हजरत जिब्रील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते थे रमज़ान के रातों में और حضرت جبریل بھی قرآن سناتے تھے, حضور سنتے تھے اور حضور قرآن سناتے تھے, حضرت جبریل سنتے تھے. جیسے دور کیا جاتا ہے تو بہرحال قرآن کے پڑھنے کا ایسا اہتمام کہ حضرت جبریل کا آنا عملی طور پر حضور کو سنانا اور حضور کا ان کو سنانا, کہ گویا عملی طور پر امت کو یہ سبق ہے کہ قرآن کی طرف اس مہینے میں خصوصی توجہ ہونی چاہیے. تو بہرحال قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ, اور اس کے اندر یہ نہیں بال لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایک پارا طے کر لیا اور ایک پارا پڑھ لیا ایسا معلوم ہوتا ہے تو ہمالیہ سر کر لیا انہوں نے, پارا پڑھ لیا تو کہ بھائی پارا پڑھ لیا پارا پڑھ لیا پارا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے دس قرآن ختم کر دیا, وہ ایک پارا پڑھ کے بھی اتنا خوش اور مغرور ہے کہ شاید کسی اور نے اتنی عبادت نہیں کی. گل کو لاز ہے اپنی نزاکت پر چمن میں اس نے دیکھے ہی نہیں ناز و نزاکت والے, بہت سے دو پارے پانچ پارے دس پارے پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا, ان کو معلوم ہی نہیں کہ دنیا میں اللہ کے بندے کتنی تلاوت کرنے والے ہیں, پورا پورا قرآن اس کے اوپر بھی دس دس پارے پڑھنے والے ہیں کہ جن رمضان کے اندر ہیں. تو بہرحال اپنا ٹارگیٹ اگر طے ہی کرنا ہے تو بڑا کرو, ایک پارے والا نہیں, ٹارگیٹ آپ طے کرو بیس پارے کا. تو ہمارے بزرگ فرماتے تھے بھائی کسی کو جب چھلانگ لگانی ہوتی ہے تو پانچ فٹ کی اگر وہ چھلانگ لگانا چاہتا ہے تو وہ سوچے گا کہ میں دس فٹ کی لگاؤں تو ہی پانچ فٹ والی چھلانگ لگانے میں وہ کامیاب ہوگا, اور اگر شروع ہی جو پانچ فٹ کی نیت کرے تو پانچ فٹ کی چھلانگ لگے گی نہیں, کمی ہوگی. بہرحال ہمیں اپنا ٹارگیٹ جو ہے بڑا بنا, ایسا بنا کبھی پورا ہی نہ ہو. اللہ خواہ آپ کی نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا کر دیں گے بڑے سے بڑا ہوگا. تو بہرحال تلاوت کا اہتمام کریں, اپنے وقتوں کو اس میں استعمال کریں. فلا تو تسبیح ہے رات کو یا دن میں, ویسے زوال کے بعد کا وقت اچھا بتایا گیا ہے تو دن میں غور کے بعد اس وقت یا کسی بھی وقت رات کو تو فلا تو تسبیح کا بھی اہتمام ہونا چاہے, اس کے مستقل فضائے ہیں. اور کلمہ طیبہ چلتے پھرتے ویسے بھی رمضان میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی کثرت کی تاکید فرمائی اس میں لا الہ الا اللہ بھی ہے, اور اس کا ایک خاص نصاب بھی ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگوں کے تجربے کا, وہ کسی روایت کا یہ نہیں ہے, یہ فضائل نماز کے اندر ذکر کے اندر یہ ہے. شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں میں نے یہ قصہ سنا, میں نے یہ سنا کہ جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات, لا الہ الا اللہ. تو بعض لوگ پوچھتے ہیں ساتھ میں محمد نے محمد رسول صرف لا الہ الا اللہ ہی یہ مراد, ویسے اگر آپ 10-20-25 کے بعد محمد رسول ساتھ میں ملا لیں تو اچھا ہے, ورنہ یہ فضیلت صرف افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہونے کے حصے سے ہے. تو لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے. میں نے یہ خبر سن کر ایک نصاب, میں نے 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا اور کئی نصاب خود اپنے لیے پڑھ کر ذخیرہ آخرت بنایا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ چیزیں ذخیرہ بنانے کی, جیسے لوگ پیسے جمع کرتے ہیں نا تو ہمیں نیکیاں جمع کرنی ہے. قرآن آپ جتنے بھی پڑھیں باقاعدہ ایک ڈائری ہونی چاہیے, اس ڈائری میں آپ اندراج کیجیے اس مہینے میں اس رمضان میں میں نے 10-15 پھر روزان اور رمضان کے علاوہ بھی جو قرآن پڑھتے ہیں اس کا بھی اندراج ہونا چاہیے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ سال بھر میں آپ نے اتنے قرآن ختم کیے, آپ کے پاس قرآن کا اتنا ذخیرہ اسٹاک میں موجود ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا, بہت سو کی عادت ہوتی ہے کسی عزیزوں میں سے دوستوں میں سے بہوؤں میں سے کسی کا انتقال ہوا اور اس سال ثواب کی ضرورت پیش آئی تو وہ قرآن لے کے بیٹھتے پڑھنے کے لیے, اور پڑھنے کے لیے پانی کی ضرورت پیش آئی تب کنواں کھول گئے. ایسا مسئلہ وہ تاطیا کزیرا کاودا شبت مار گزیدہ مردہ شبت, تو کسی کو سانپ نے کاٹ لیا ہو علاج کے لیے تیا کھلایا جائے, سانپ کے کاٹنے کے بعد تیا ڈھونڈنے میں جائیں گے تو وہاں تک تو وہ سانپ کا کٹا ہوا بےچارا مر جائے گا, وہ تو پہلے سے لا کے رکھا جاتا ہے. تو ایسے ہی ہمارے پاس اس طرح کے اسٹاک ہوں گے تو کسی کا بھی انتقال ہوا کسی نے خبر نہیں سنا اسی وقت نیت کر لیجیے اللہ میرے پاس قرآنوں کا ایک قرآن کا ثواب میں اس کو کتنا آسان ہے. اسی طرح تسبیحات کے کلمے پیچھے کلمے چوتھے کلمے یہ سب اس کو باقاعدہ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت خانگی رحمۃ اللہ علیہ کا جل خلفہ میں سطح خانگی کے نازی ہمیشہ आप तस्वीर जिक्र करते रहते, जो आप आज एक गढ़ा था उसमें आप वो दाने इधर से उधर करवाते रहते हैं, और आज तक हजरत के खुदाम को भी पूरी हकीकत मालूम नहीं हो सकती, लेकिन बहरहाल हजरत के यहाँ इन अस्कार का और उसके इस तरह तादाद के महफूज रखने का बड़ा एहतमाम था। इसलिए ये चलते फिरते ऐसी तस्वीर रखो, निसाब वाली तस्वीरें भी अब तो बंद की है, निसाब है निसाब वाली तस्वीरें भी उनको पढ़ते रहो, निसाब जमा करते रहो, तो चलते फिरते एक आदत बन जाए। दोबारा ये तो यहाँ इन्होंने किस्सा में पढ़ रहा था एक निसाब, और कई निसाब अपने लिए पढ़कर जखीरा आदत बनाए। हमारे पास एक नौजवान रहता था जिसके मुताबिक ये मशहूर था कि साहिब कश्म है जन्नत दोजो का भी उसको कश्म होता है, क्योंकि उसकी सेहत में कुछ तरद था। एक मरतबा वो नौजवान हमारे साथ खाने में शरीक था कि अचानक उसने चीख मारी और सांस फूलने लगा और कहा कि मेरी माँ दोजख में गई है। उसकी हालत मुझे नजर आई, कुतुबी कहते हैं कि मैं उसकी घबराहट देख रहा था, मुझे ख्याल आया कि एक इंसान उसकी माँ को बख्श दे जिससे उसकी सच्चाई का भी मुझे तजर्बा हो जाएगा। चुनाचे मैंने एक निसाब 70,000 का उन निसाबों में से जो अपने लिए पढ़े थे उसकी माँ को बख्श दिया, क्योंकि उसी वक्त बख्शा मैंने अपने दिल ही में चुपके ही से बख्शा था, और मेरे इस पढ़ने की खबर भी अल्लाह के सिवा किसी को न थी। मगर वो नौजवान फौरन कहने लगा कि था मेरी माँ दोजख के अजाब से हटा दी गई। कुतुबी कहते हैं कि मुझे इस किस्से से दो फायदे हुए, एक तो इस बरकत का जो 70,000 की मकदार पर मैंने सुनी थी उसका तजर्बा हुआ, दूसरे उस नौजवान की सच्चाई का भी यकीन हो गया। दोबारा कैसे ये निसाब वगैरह है उसको भी कहते हैं आदत डाल दी है, और दिनों में भी सफर वगैरह में भी सफर में भी हमारे यहाँ हमारे अहबाब जो है शिकायतें करते हैं सफर के अंदर मामूलात पूरे रह गए, तस्वीर रह गई, तिलावत रह गई। अरे भाई मैं कहाँ करता हूँ सफर में तो इतना वक्त मिलता है कि रोजाना हम जो करते हैं उससे कई गुना हम कर सकते हैं। लोग सफर के औकात को गुजारने के लिए जो है टाइम पास के तौर पर अखबार खरीदते हैं, मूंगफली खरीदते हैं, समझाया कि नहीं, तो टाइम पास हो जाए। और हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ इतनी बड़ी नेमत, सफर में आदत डाल, कोई लम्हा आपका बेकार गुजरना, ट्रेन में बैठे हैं बस में बैठे हैं बस तस्वीर पकड़ लो कुरान खोल लो, अगर बावजूद हाफिज है तो जबानी हजरत माना सिद्दीक अहमद साहब खिलाड़ी को देखा हजरत के साथ सफर में कोई अगर एक मौलाना कहते हैं कि मतलब हजरत के साथ सफर कर रहा था और ट्रेन जा रही थी बहुत अच्छा मंजर आया, तो मैंने कहा अपनी हिमाकत से हजरत से हजरत के आदम बड़ा अच्छा अच्छी मंजर है। हजरत ने बड़ी नागवारी के साथ फरमाया किस लगियात में पड़े हो अपने वक्त को, हजरत फिलहाल को मशहूर थे। तो हमारे अकाबिर जो हैं वो तो अपने वक्तों को इस तरह वसूल करते हैं। दोबारा हमें अपना मिजाज इस तरह का बनाना चाहिए, और यहाँ एहतिकाफ है, एहतिकाफ के जो तकाजे हैं वो भी पूरे करने हैं, एहतिकाफ के अपने अहकाम में और एहतिकाफ क्योंकि मस्जिद में है तो मस्जिद के भी आदाब हैं, मस्जिद के आदाब की बहुत रियायत करनी चाहिए। सिर्फ एक रिवायत सुनाकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि भाई क्योंकि आज हल्कों की भी तरतीब देनी है, तो हजरत मुफ्ती अब्दुल अजीज साहब नवर अल्लाह मकदहू ने इसमें फतावा रहीमिया में हाफिज़ इब्न अल-हाज मालिकी की मुदखल के हवाले से रिवायत जिक्र की है कि जब कोई आदमी दुनिया की बातें करता है मस्जिद में तो फरिश्ते उसको कहते हैं उसको दिया हबीब अल्लाह के अल्लाह के दोस्त अल्लाह के महबूब खामोश हो जाए। उसके बाद भी अगर सिलसिला जारी रहता है फरिश्ता कहता है, वो नहीं सुनता होगा तो बात करने के फरिश्ता कहता है, बाद अल्लाह के बंदे सुन भी लेते, जब उसकी बात का सिलसिला जारी रहता है तो फिर फरिश्ता कहता है उसको दिया आदू अल्लाह के अल्लाह के दुश्मन खामोश हो जाए। उसके बाद भी अगर वो खामोश नहीं होता बात का सिलसिला जारी रहता है तो फरिश्ता कहता है उसको लानत अल्लाह अलैह खामोश हो जाते उस पर अल्लाह की लानत हो। तो हम तो यहाँ अल्लाह की रहमत लेने के लिए आए हैं और लानत लेने के लिए नहीं, इसलिए मस्जिद के सारे आदाब का पूरा लिहाज करना है। दोबारा एहतिकाब के तकाजे भी पूरे करने हैं, मस्जिद के आदाब का लिहाज, अपने आप को इन चीज़ों में मशगूल रखें, कोई वक्त कोई लम्हा बेकार और दाए होना न चाहिए, और वह हर वक्त दिल से अल्लाह की तरफ متوجہ رہ جائیں گے. یک یک لمحہ غافل اداں شاہ نباشی شاید کے نگاہ کنر و آگاہ نباشی, کہ ایک لمحہ بھی اللہ کی طرف سے ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نظر التفات ہو اور ہم بے خبر ہوں, تو اس لیے بادشاہ کسی کی طرف توجہ کرے, وہ کسی جو ہے ماں بتو مشغول بتو بامر و زید جیسا معاملہ ہو کہ اللہ کی نظر التفات ہماری طرف ہو اور ہم کسی چیزوں کی طرف ہو تو اچھا نہیں. بارہ خیر وہاں بات بات کی اصل شروع کرنے کی ہو رہی ہے, لیکن بارہ یہ یہاں کے نظام یہاں کے اوقات کو کس طرح گزارنا ہے اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے مختصر چیزیں پیش کر دی ہیں, ان کو ذہن میں رکھیے. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے, اس کی قدر یہی ہے, اس کا شکر یہی ہے کہ ہم اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے, کیونکہ آج حلقے بھی شروع کرنے ہیں, اس لیے وہ حلقوں کی ترتیب بھی آپ کو بتائی جائے.
پہلے جن ساتھیوں کے حلقے بنے ہوئے ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں میں پہنچ جائیں, جن حضرات کی ترتیب نہیں بنی ہے وہ حضرات یہیں رہیں, میں جلدی سے اپنے اپنے حلقوں میں پہنچ جائے چاہتے ہیں.